एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार और ग्रंथ सार में आपका स्वागत है। आज हम जिस किताब पर बात करने वाले हैं वो है जॉन नोल्स का क्लासिक उपन्यास अ सेपरेट पीस।
ये उपन्यास ऊपर से देखने में तो एक बोर्डिंग स्कूल में दो दोस्तों की कहानी जैसा लगता है।
हाँ बिल्कुल, लेकिन इसकी परतों के नीचे दोस्ती, ईर्ष्या और मासूमियत के खो जाने पर एक बहुत गहरा चिंतन है। तो कहानी का जो समय है वो है 1942, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है।
बिल्कुल, पूरी दुनिया में एक तरह से उथल पुथल मची हुई है।
हाँ, लेकिन कहानी का जो मंच है वो इस सबसे बिल्कुल अलग है, न्यू हैम्पशायर का एक काल्पनिक बोर्डिंग स्कूल, डेविन स्कूल।
और शायद इसीलिए इसका शीर्षक भी है ए सेपरेट पीस, मतलब एक अलग थलग शांति।
एग्जैक्टली। और ये कहानी एक बिल्डिंग्स रोमान है, यानी किशोरावस्था से वयस्क होने के सफर की कहानी। पर दिलचस्प बात यह है कि कहानी हमें सुना कौन रहा है? जीन फॉरेस्टर, जो घटना के 15 साल बाद अपने स्कूल लौटा है।
हाँ, और ये बहुत जरूरी है, मतलब ये सिर्फ यादें नहीं है, ये एक अपराध बोध से रंगी हुई यादें हैं।
तो एक अविश्वसनीय कथावाचक, अनरिलायबल नरेटर वाली बात आ जाती है। क्या हम उसकी हर बात पर यकीन कर सकते हैं?
सही सवाल है, क्या पता वो हमें वही बता रहा हो जो वो याद रखना चाहता है।
और उपन्यास यही सवाल उठाता है कि बाहरी युद्ध की जड़ें क्या असल में इंसानी दिल के अंदर के संघर्षों में नहीं होती?
और इसी भीतरी संघर्ष की शुरुआत होती है 1942 की सुनहरी गर्मियों में। सब कुछ बहुत बेफिक्र, बहुत खुशनुमा सा लगता है।
हाँ, और यहीं हमारी मुलाकात होती है दो मुख्य पात्रों से। पहला तो हमारा कथावाचक है, जीन फॉरेस्टर,
जो पढ़ाई में बहुत होशियार है, विचारशील भी है, पर अंदर ही अंदर
बहुत ज्यादा असुरक्षित है।
हाँ, और दूसरा है उसका बिल्कुल उल्टा, उसका रूममेट और सबसे अच्छा दोस्त फिनियस, जिसे सब फिनी कहते हैं।
फिनी, वो तो बस करिश्माई है, एक नेचुरल एथलीट, और नियमों को तोड़ने में उसे मजा आता है।
लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बस शरारत के लिए।
उसमें एक अजीब सी मासूमियत है, और शायद यही बात जीन को सबसे ज्यादा परेशान करती है।
बिल्कुल, जैसे फिनी स्कूल का तैराकी रिकॉर्ड तोड़ देता है पर किसी को बताता भी नहीं,
क्योंकि उसके लिए जीत हार का कोई मतलब ही नहीं है।
उसके लिए तो बस खेल का आनंद जरूरी है। उसने तो ब्लिट्ज बॉल नाम का एक खेल भी बना डाला था।
हाँ, जिसमें कोई टीम नहीं होती, कोई दुश्मन नहीं होता।
तो एक तरह से वो खेल ही उसकी दुनिया देखने का नजरिया था, एक ऐसी दुनिया जहां कोई प्रतिद्वंदिता है ही नहीं।
आज के दौर में तो ऐसा सोचना भी मुश्किल है।
और यही चीज जीन के मन में मतलब एक जहर घोलने लगती है।
वो फिनी की तारीफ तो करता है पर उसे यकीन नहीं होता कि कोई इतना सहज, इतना अच्छा कैसे हो सकता है। उसे लगता है ये जरूर फिनी की कोई चाल है, उसे पढ़ाई से भटकाने की साजिश।
जबकि ये पूरी की पूरी लड़ाई सिर्फ जीन के दिमाग में चल रही है, फिनी को तो खबर तक नहीं।
और यही उपन्यास का जो केंद्रीय सवाल है वो उभर कर आता है
कि हर बाहरी युद्ध की जड़ असल में एक आंतरिक संघर्ष में होती है।
जीन की ये जो ईर्ष्या है, ये डर है, ये उसी अज्ञान का एक छोटा रूप है जो दुनिया में देशों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देता है।
और ये आंतरिक संघर्ष एक शाम अपने चरम पर पहुंच जाता है।
हाँ, वो पल, वो कहानी का निर्णायक मोड़ है। फिनी ने वो जो एक गुप्त क्लब बनाया था,
सुपर सुसाइड सोसाइटी ऑफ द समर सीजन,
जिसका नियम था नदी के किनारे एक बहुत ऊंचे पेड़ की डाल से नदी में कूदना।
उस शाम जीन और फिनी दोनों उस डाल पर एक साथ खड़े होते हैं।
माहौल शांत है लेकिन जीन के अंदर एक तूफान चल रहा है।
और उसी एक पल में जब फिनी कूदने के लिए आगे बढ़ता है, जीन के अंदर का अंधेरा उस पर हावी हो जाता है
और वो डाल को हल्का सा हिला देता है।
एक छोटा सा धक्का, एक पल की हरकत
और सब कुछ बदल जाता है।
फिनी अपना संतुलन खो देता है और नीचे गिर जाता है, उसकी टांग टूट जाती है।
ये सिर्फ एक शारीरिक चोट नहीं थी।
नहीं, ये मासूमियत के अंत का प्रतीक था। उस हादसे के साथ 1942 की वो सुनहरी गर्मियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं।
वो लड़का जो हवा में उड़ता था अब हमेशा के लिए जमीन पर आ गया था।
और इस हादसे के बाद डेविन स्कूल का पूरा माहौल ही बदल जाता है।
हाँ, वो गर्मियों की बेफिक्री चली जाती है और सर्दियों के सत्र की निराशा और तनाव वो जगह ले लेते हैं।
अब युद्ध की खबरें दूर की बात नहीं लगती, स्कूल में सेना की भर्ती भी शुरू हो जाती है।
और जीन, वो एक गहरे अपराध बोध से जूझ रहा है।
वो अपनी गलती मानने की कोशिश भी करता है पर फिनी उस पर विश्वास करने से ही इनकार कर देता है।
हाँ, क्योंकि फिनी की मासूम दुनिया में ये मुमकिन ही नहीं है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त उसे जानबूझकर चोट पहुंचाए।
और उसका ये इनकार जीन के अपराध बोध को और भी गहरा कर देता है।
इस अपराध बोध से बचने के लिए जीन एक अजीब मनोवैज्ञानिक रास्ता अपनाता है।
वो फिनी बनने की कोशिश करने लगता है।
बिल्कुल, अपनी पहचान को मिटाकर, क्योंकि फिनी अब खेल नहीं सकता।
तो जीन उसके सपने को अपना बना लेता है और ओलंपिक के लिए ट्रेनिंग शुरू कर देता है।
एक तरह से प्रायश्चित करने का उसका अपना तरीका।
और इसी बदले हुए माहौल में दो और महत्वपूर्ण पात्र आते हैं।
एक है ब्रिंकर हैडली,
जो नियमों, व्यवस्था और न्याय का प्रतीक है,
और उसे शुरू से ही जीन पर शक है।
हाँ।
और दूसरा है लेपर लिपेलियर,
एक शांत प्रकृति प्रेमी लड़का, थोड़ा सनकी।
लेपर सेना में भर्ती होने वाला डेविन का पहला छात्र बनता है।
उसे लगता है कि युद्ध किसी स्कीइंग वीडियो की तरह साफ सुथरा और रोमांचक होगा,
लेकिन असलियत कुछ और ही थी।
हाँ।
सेना की क्रूरता से लेपर का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है
और वो वहां से भाग आता है।
लेपर का टूटना कहानी में एक बहुत जरूरी मोड़ है। वो युद्ध की क्रूर सच्चाई को डेविन की सुरक्षित दुनिया में ले आता है।
अब युद्ध कोई रोमांटिक ख्याल नहीं है, वो एक मानसिक तबाही का नाम है।
और सबसे अहम बात, लेपर उस हादसे का एकमात्र चश्मदीद गवाह था।
हाँ, उसने उस शाम पेड़ के नीचे से जीन और फिनी को उस डाल पर देखा था।
और लेपर की मौजूदगी ही कहानी के अंतिम टकराव की वजह बनती है।
ब्रिंकर हैडली, जो हमेशा से सच जानना चाहता था, वो छात्रों की एक अनौपचारिक अदालत लगाता है।
लेकिन सवाल ये है कि क्या वो सच में न्याय चाहता था या बस अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहता था।
वो उस अदालत को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है।
वो जीन और हिचकिचाते हुए फिनी को सबके सामने खड़ा कर देता है और सवाल जवाब शुरू कर देता है।
और पूछताछ के दौरान वो लेपर को एक गवाह के तौर पर पेश करता है।
लेपर अपनी टूटी फूटी मानसिक अवस्था में बताता है कि उसने उस शाम क्या देखा था।
वो कहता है कि डाल पर हरकत पिस्टन की तरह हुई थी,
एक ने दूसरे को धक्का दिया।
ये सुनते ही फिनी का जो इनकार का बनाया हुआ कवच था वो टूट जाता है।
जिस सच्चाई से वो महीनों से भाग रहा था वो अब इसके सामने थी।
वो घबराकर रोते हुए कमरे से बाहर भागता है
और फिसलकर उन्हीं संगमरमर की सख्त सीढ़ियों पर गिर जाता है
और उसकी वही टूटी हुई टांग फिर से टूट जाती है।
यहाँ प्रतीकों का महत्व देखने लायक है। फिनी की पहली गिरावट एक पेड़ से नदी में हुई थी, जो प्रकृति का प्रतीक है,
लेकिन दूसरी गिरावट इंसान की बनाई सख्त कठोर सीढ़ियों पर होती है,
जो समाज के कठोर नियमों और उस सच्चाई का प्रतीक है जिससे अब बचा नहीं जा सकता।
उस रात अस्पताल में जीन और फिनी के बीच एक शांत मार्मिक बातचीत होती है।
फिनी आखिरकार सच्चाई को स्वीकार करता है।
वो जीन से कहता है कि वो मानता है कि ये जीन के अंदर की किसी अंधी या अज्ञानी भावना की वजह से हुआ, नफरत की वजह से नहीं।
वो एक तरह से जीन को माफ कर देता है।
ये उनकी दोस्ती का अंतिम सुलह था।
लेकिन अगले दिन हड्डी जोड़ने के एक छोटे से ऑपरेशन के दौरान एक जटिलता पैदा होती है।
बोन मैरो का एक टुकड़ा फिनी के खून में मिलकर उसके दिल तक पहुंच जाता है और उसकी मौत हो जाती है।
एक क्रूर विडंबना है। मासूमियत का प्रतीक फिनी इस कठोर दुनिया को बर्दाश्त नहीं कर पाता।
कहानी के अंत में वयस्क जीन अपने इस पूरे अनुभव पर सोचता है।
वो महसूस करता है कि उसने वर्दी पहनने से पहले ही अपनी असली लड़ाई डेविन में लड़ ली थी और जीत भी ली थी।
जब वो कहता है मैंने वहां अपने दुश्मन को मार डाला, तो उसका मतलब फिनी से नहीं होता।
नहीं, बिल्कुल नहीं। जीन का दुश्मन फिनी कभी था ही नहीं। उसका असली दुश्मन तो
उसके अपने अंदर की ईर्ष्या, डर और असुरक्षा थी।
और उस आंतरिक दुश्मन को पहचानने और उसका सामना करने के बाद ही उसे अपनी एक अलग शांति मिल पाती है।
ये वो शांति है जो उसे बाहरी दुनिया के युद्ध से बचा लेती है, क्योंकि वो अपनी अंदर की जंग लड़ चुका है।
तो अ सेपरेट पीस डेविन स्कूल की दीवारों तक सीमित नहीं है।
ये मन की वो अवस्था है जहाँ इंसान अपने अंदर के अंधेरे को कबूल कर लेता है।
ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन के सबसे बड़े संघर्ष अक्सर बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के भीतर लड़े जाते हैं।
और सच्ची शांति बाहरी अंधेरे को नज़रअंदाज करने से नहीं, बल्कि अपने अंदर के अंधेरे का सामना करने और उसे जीतने से मिलती है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।